नमस्कार, मैं डॉली श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर मोबाइल वाणी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शीत बसंत की कहानी। एक राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, छोटी रानी को अवहेलित करके रखा गया था। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती एवं सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे में साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र शीत और बसंत के दुखी दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता, राजा की बसंत लता नामक एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के तीन पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले हड्डियों का ढांचा मात्र। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब पुआ पकवान मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे, संटी की तरह ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत बसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे थे। ये देखकर वह और कुड़ जाती। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उसकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकने शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उनसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से से थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सोत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून में से मैं स्नान न कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दो। शीत वसंत का रो रो कर बुरा हाल, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। सो उनके हाथ पैरों की रस्सियों से बांध कर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। शीत बसंत के चित्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद शीत बसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दिया। शीत बोला, भाई हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र, क्या करता, मुझे मानना ही था। पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे कपाल में जो लिखा है होगा। तुम वक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकालने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। शीत वसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वे चलते रहे पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं पर पानी तो कहीं नहीं दिखा, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई। बसंत बोला, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। शीत ने कहा। शीत पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो बसंत की प्यास मिट सकती है। सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, वह राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों और प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राजतिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, सब बेकार। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राजसिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता था। शीत और बसंत के पिता पर देवी आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे धुतकार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंतलता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी ने परामर्श कर उन्हें स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की, सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंत लता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वर्णमाला डालेगी। इधर बसंत ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरम्भ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पाँव में आलता लगाया और फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोता ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती। इससे रुंझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंत लता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर बसंत लता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंत लता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंत लता ने सारी चीजें पहन ली। अब तोते ने कहा, सब तो हुआ पर गज मुक्ता ना होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला देता दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों ने एक झुंड ने उन पर घावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, उनके घायल हो गए और अनेक घायल हो गए। इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट आए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई, फिर बोला, कौन जानता है इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ के क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गज मुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन। बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा कि मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में मैं तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगी। जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ, फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्रों के वस्त्र मांगो, सारी चीजों की प्राप्ति हो तुम्हें हो जाएगी, गुल और बुलबुल ने उनसे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राज वस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी के चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस हाथी सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर का स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा। बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंतलता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा ही जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौंक चक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से कहा से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर शीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार ना लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह उसी इस जगह लौट कर नहीं आ सका था। बसंत क्या का क्या हुआ, वह कहाँ गया, वह क्या वह जीवित होगा, यह सोचकर वह रो पड़ा। उसने अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहा। बसंत गज मुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि शीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा को कहो कि बसंत लता को छोड़ दे। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतिज्ञा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गज मुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। आठवें दिन शीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछली को काटने बैठी, लेकिन आश्चर्य मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत की बात बताई तो वह स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखकर तो दौड़कर वह उसे अपने गले लगा लिया। तभी वह दासियां उन बोलने लगी बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची, लेकिन आश्चर्य शीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां तीनों तीन मनुष्य में बदल गई। उन्हें देखते ही वे पहचान गए, वे बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत बसंत के सौतेले भाई। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पांचों भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंत के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी, गज मुक्ता को लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंत लता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गज मुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा शीत के ही भाई हैं। बसंत लता बहुत खुश हुई, उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उनसे उसे तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बसंत लता के हाथों से तोते के माथे की दवाई पूछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गई। बसंत लता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ, शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने आप से घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंत लता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंत लता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, ये क्या बात हुई? बसंत लता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंत लता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बिठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उसे बसंत लता के अलावा एक और अपूर्व सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए, उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। धन्यवाद।